एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अहम विषय पर बात करने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल, ये है अमेरिका के मूल निवासियों का साहित्य, मतलब नेटिव अमेरिकन लिटरेचर।
जी, और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे जॉय पोर्टर की किताब नेटिव अमेरिकन लिटरेचर के जरिए। देखेंगे कि जो हमें स्रोत मिले हैं उनसे क्या पता चलता है।
और देखिए, ये विषय सिर्फ किताबी नहीं है, आज की दुनिया से मुझे लगता है बहुत गहराई से जुड़ा है।
सही बात है।
ये हमें वो आवाजें सुनने का मौका देता है जिन्हें अक्सर, मतलब इतिहास में या जो मुख्य धारा की कहानियां हैं उनमें जगह नहीं मिल पाती है ना।
हाँ, अनदेखा कर दिया जाता है।
ये उपनिवेशवाद की बात है, अपनी पहचान बचाने के संघर्ष की, और कहानी कहने की जो ताकत होती है
उसकी बात है।
बिल्कुल, और ये बातें सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, दुनिया भर में कई समुदायों के लिए मायने रखती हैं।
बिल्कुल सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं लेखिका से, जॉय पोर्टर।
हाँ, जॉय पोर्टर।
ये यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ हल में प्रोफेसर हैं, स्वदेशी और पर्यावरण इतिहास पढ़ाती हैं।
और दिलचस्प बात ये है, जैसा आपने कहा, कि वो खुद मूल अमेरिकी नहीं है।
जी हाँ, लेकिन इस विषय पर उनके काम को बहुत बहुत सम्मान से देखा जाता है।
हाँ, और शायद यही बात उन्हें थोड़ी खास भी बनाती है, मतलब एक बाहरी विद्वान होने के नाते वो इस साहित्य को बहुत सावधानी से और एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ देखती हैं।
हाँ, उनका अप्रोच बैलेंस्ड है। वो सिर्फ तथ्य नहीं रखती बल्कि जो स्वदेशी नजरिया है, उनकी संप्रभुता, उनका आत्मनिर्णय का अधिकार, उसका गहरा सम्मान करती हैं।
उनका जोर इस बात पे ज्यादा रहता है कि इस साहित्य को पश्चिमी पैमानों पर कसने की बजाय,
हाँ वो नहीं करना चाहिए,
उसे उसके अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसकी अपनी शर्तों पर समझा जाए।
सही कहा, वो साहित्य को सिर्फ आर्ट नहीं मानती, वो उसे जोड़ती हैं स्वदेशी अधिकारों से, कल्चर को जिंदा रखने की लड़ाई से, राजनीतिक दावों से। उनकी कोशिश यही रहती है कि मूल अमेरिकी साहित्य की अपनी अलग पहचान, उसका अपना सौंदर्य बोध, उसकी जो बौद्धिक गहराई है, वो सामने आए।
तो ये किताब आखिर करती क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है?
देखिए, ये किताब एक तरह से परिचय कराती है उत्तरी अमेरिका की जो हजारों साल पुरानी स्वदेशी साहित्यिक परंपराएं हैं उनका।
अच्छा,
ये उन लोगों के लिए भी है जो इस विषय में, मान लीजिए, नए हैं, और उनके लिए भी जो पहले से कुछ जानते हैं और अपनी समझ को और गहरा करना चाहते हैं।
और ये जो साहित्य की हमारी जो बनी बनाई सोच है, जो ज्यादातर पश्चिमी है, उसको चुनौती भी देती है।
बिल्कुल, यही इसका अहम पॉइंट है। किताब का मूल तर्क ये है कि नेटिव अमेरिकन लिटरेचर सिर्फ अमेरिकी साहित्य का एक छोटा सा हिस्सा वैसा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी एक अनूठी साहित्यिक दुनिया है, जिसके अपने नियम हैं, अपनी जड़ें हैं, अपना सोचने का तरीका है।
और सबसे जरूरी बात,
कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक पहचान को बचाने का और विरोध दर्ज करने का एक ताकतवर जरिया है।
ये वो आवाज है जो इतने सालों के उपनिवेशवाद और दमन के बावजूद जिंदा रही,
और आज भी गूंज रही है।
ये किताब हमें एक लंबी यात्रा पर ले जाती है ना, मतलब हजारों साल पुरानी मौखिक परंपराओं से शुरू होती है।
जी हाँ, उरेचर से, फिर यूरोपीय संपर्क का क्या असर पड़ा, उपनिवेशवाद का, और फिर कैसे 20वीं-21वीं सदी में इस साहित्य का एक जबरदस्त उभार हुआ, एक पुनर्जागरण हुआ।
इसमें पारंपरिक चीजें भी हैं, जैसे सृष्टि कथाएं, गीत वगैरह।
हाँ, और आधुनिक रूप भी हैं, जैसे उपन्यास, कविता, संस्मरण।
और ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई एक अकेली परंपरा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, अमेरिका में ही 570 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं, तो ये उन सब की मिलीजुली रंग बिरंगी विरासत है, बहुत विविधता है इसमें।
चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, आपने ओरिचर की बात की।
हाँ, पोर्टर शुरुआत में ये सवाल उठाती हैं कि भाई साहित्य है क्या, क्या सिर्फ लिखी हुई चीज है?
अच्छा,
यहीं पर वो ओरिचर यानी मौखिक परंपराओं की बात करती हैं, कहती हैं कि इन्हें सिर्फ लोक कथा मानकर कम आंकना गलत है।
तो ये क्या है फिर?
ये तो कानून, इतिहास, दर्शन, अध्यात्म, सबका मिला जुला एक जटिल ताना बाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर ही जिंदा रहा।
ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, मतलब कहानी सुनाना सिर्फ मनोरंजन नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ज्ञान और संस्कृति को सहेजने का, आगे बढ़ाने का तरीका था।
और ये मौखिक परंपराएं कोई पुरानी रुकी हुई चीजें नहीं है, मतलब जीवित हैं, बदलती रहती हैं।
बिल्कुल, पोटर यही समझाती हैं। इसमें सृष्टि की कहानियां हैं, वो बताती हैं कि दुनिया कैसे बनी, इंसान का प्रकृति से क्या रिश्ता है, अपनी जमीन से पवित्र जुड़ाव कैसे है।
अच्छा,
फिर वो चालाक किरदारों की कहानियां ट्रिक्स्टर टेल्स, जैसे कोयोट या रेवन, वो हंसाते हंसाते नैतिकता, समाज के कायदे, ये सब सिखा जाती हैं।
हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में।
और फिर हैं औपचारिक साहित्य, गीत, मंत्र, अनुष्ठान। इन्हें अक्सर सबसे पवित्र माना जाता है और इनका इस्तेमाल होता है व्यवहारिक कामों में, जैसे इलाज करना या अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करना।
और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरा अनुभव है, मतलब कहने वाला, सुनने वाला, माहौल।
हाँ, वो परफॉर्मेटिव पहलू बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन फिर यूरोपीय संपर्क हुआ, उपनिवेशवाद आया, इसका क्या असर पड़ा इन पर? क्या ये खत्म हो गई?
देखिए, खत्म तो नहीं हुई, लेकिन असर बहुत गहरा पड़ा। जाहिर है बहुत कुछ खोया भी, पर दिलचस्प बात यह है कि कई बार लिखने की कला को, मतलब लिटरेसी को, मूल निवासियों ने अपने बचाव के लिए, अपनी बात रखने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया।
अच्छा,
कैसे?
जैसे 1830 के दशक में विलियम एप्स जैसे लोग थे, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। अब ये सिर्फ निजी दास्तानें नहीं थी, ये नस्लवाद के खिलाफ, अपने हकों के लिए एक बुलंद आवाज थी। एक तरह का राजनीतिक प्रोटेस्ट था ये।
और इसी दौर में संधियां भी हुई होंगी।
हाँ, और पोर्टर संधियों को सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं मानती, वो उन्हें एक तरह का क्रॉस कल्चरल साहित्य मानती है, जहां जमीन, मिल्कियत और बोले गए बनाम लिखे गए शब्द की पवित्रता, इन सब की अलग अलग समझ टकराई।
ये तो बिल्कुल नया तरीका है संधियों को देखने का।
और फिर वो बोर्डिंग स्कूल वाला दौर आया।
हाँ, वो एक बहुत ही बहुत दुखद अध्याय,
जहां बच्चों को उनके परिवारों से दूर ले जाकर उनकी संस्कृति, उनकी भाषा सब मिटाने की कोशिश हुई।
जी, इसका असर पीढ़ियों तक रहा। बहुत दर्दनाक अनुभव थे वो। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, इसी त्रासदी में एक अजीब सी विडंबना भी छुपी है।
विडंबना?
हाँ।
कैसी?
कि इन्हीं स्कूलों से कुछ लोगों ने लिखना सीखा और बाद में उसी हुनर का इस्तेमाल अपनी आप बीती बताने, गवाही देने और अपने समुदाय की आवाज बनने के लिए किया।
अच्छा।
यहीं पर एक और जरूरी विचार आता है, जिसका जिक्र पोर्टर ने किया है गेराल्ट विजेनोर के हवाले से, सर्वाइवेंस।
सर्वाइवेंस?
हाँ।
ये क्या है? ये सर्वाइवल से अलग है?
हाँ, ये सिर्फ सर्वाइवल यानी किसी तरह जिंदा रह जाने से कहीं ज्यादा है। सर्वाइवेंस का मतलब है सक्रिय प्रतिरोध।
सक्रिय प्रतिरोध?
हाँ, मतलब सिर्फ सहना नहीं, बल्कि रचनात्मक तरीके से अनुकूलन करना, अपनी पहचान और उपस्थिति पर लगातार दावा करना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। ये हार ना मानने का जज्बा है, अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश।
वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है।
और ये हमें नेटिव अमेरिकन साहित्य में बार बार दिखता है।
तो ये सर्वाइवेंस हमें साहित्य में कैसे दिखाई देता है, खासकर 20वीं सदी में, जब कहा जाता है कि इस साहित्य का पुनर्जागरण हुआ?
हाँ, 20वीं सदी के मध्य में एक बड़ा मोड़ आया, जिसे नेटिव अमेरिकन रेनेसा कहते हैं।
वो पुलित्ज़र प्राइज वाला वाक्या?
बिल्कुल। 1969 में एन स्कॉट मोमाडे को उनके उपन्यास हाउस मेड ऑफ डॉन के लिए पुलित्ज़र मिला।
उसने दुनिया का ध्यान खींचा इस साहित्य की तरफ।
और फिर कई बड़े लेखक सामने आए।
हाँ, लेस्ली मार्मोन सिल्को, लुइस एल्ड्रिच और भी कई।
इनके उपन्यासों में आप वो सर्वाइवेंस का जज्बा महसूस कर सकते हैं।
कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे सिल्को की सेरेमनी का आपने जिक्र किया था पहले।
हाँ, सेरेमनी, ये कहानी है एक ऐसे मूल अमेरिकी सैनिक की जो दूसरे विश्व युद्ध से वापस आता है। वो बहुत टूटा हुआ है, ट्रॉमा में है। और वो ठीक कैसे होता है? अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं, अपनी जमीन से दोबारा जुड़कर, पुरानी कहानियों और समुदाय के साथ से।
अच्छा, मतलब परंपराएं आज भी इलाज कर सकती हैं।
बिल्कुल, यही उपन्यास दिखाता है। और इन उपन्यासों में ये विषय बार बार आते हैं, पहचान की तलाश, अपनी जमीन से जुड़ाव, परंपरा और आधुनिकता के बीच का तनाव, समय को एक चक्र की तरह देखना,
सीधी रेखा की तरह नहीं।
हाँ, चक्रीय समय। और लिखने के अंदाज में भी वो मौखिक कहानी कहने का असर दिखता है, किस्सा गोई का अंदाज, नॉन लीनियर नैरेटिव्स।
उपन्यास के अलावा और कौन से रूप जरूरी हैं? कविता, नाटक?
हाँ, कविता और नाटक भी बहुत अहम है। कविता का रिश्ता तो मौखिक परंपराओं, गीतों, मंत्रों से बहुत गहरा है।
जॉय हार्जो का नाम आपने लिया था?
जी, जॉय हार्जो, वो अमेरिका की पहली मूल अमेरिकी पोएट लॉरिएट बनी। उनकी कविता में आपको संगीत मिलेगा, लय मिलेगी और गहरी भावनाएं। साइमन ऑर्टिज़ भी एक बड़े कवि हैं।
और नाटक?
नाटक का भी उदय हुआ, खासकर 1970 के दशक के बाद। हुआ यह था कि अमरीकी मंच पर सदियों से मूल निवासियों की बहुत घिसी पिटी, अपमानजनक छवियां दिखाई जाती थीं।
हाँ, वो स्टीरियोटाइप्स।
तो फिर मूल निवासियों ने खुद अपनी थिएटर कंपनियां बनाई, जैसे नेटिव अमेरिकन थिएटर एंसेंबल, ताकि वो मंच पर अपनी कहानियां अपने तरीके से कह सकें, उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ सकें।
ये तो बहुत जरूरी था।
हाँ, और ये आज भी जारी है।
और आज की बात करें तो क्या ये साहित्य अभी भी बदल रहा है, मतलब नई दिशाओं में जा रहा है?
बिल्कुल, ये कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है। आज के लेखक साइंस फिक्शन, फैंटेसी, हॉरर, यूथ एडल्ट फिक्शन, इन सब जॉनर्स में लिख रहे हैं।
अरे वाह!
स्टीफन ग्रैम जोन्स, रिबेका रोनहॉर्स जैसे नाम हैं। स्वदेशी भविष्यवाद यानी इंडिजिनस फ्यूचरिज्म जैसे नए विचार आ रहे हैं।
स्वदेशी भविष्यवाद, ये क्या है?
मतलब भविष्य की कल्पना अपने नजरिए से करना, जिसमें तकनीक भी हो लेकिन परंपरा की जड़ें भी हों, जो औपनिवेशिक चिंताओं से मुक्त हो और सांस्कृतिक निरंतरता पर जोर दे।
ये तो बहुत ही रोमांचक लगता है।
हाँ, और डिजिटल दुनिया भी है, ब्लॉग, सोशल मीडिया, ये सब भी कहानी कहने के नए मंच बन गए हैं। तो संदेश साफ है, ये परंपरा जिंदा है, सांस ले रही है और आने वाले कल को आकार दे रही है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तो मेरे ख्याल से यही सर्वाइवेंस वाली बात।
हाँ, सांस्कृतिक निरंतरता और अनुकूलन।
बिल्कुल, मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि मुश्किलों के बावजूद अपनी संस्कृति को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाना, बदलते वक्त के साथ ढालना। ये तो हमें अपने आसपास भी दिखता है ना, कैसे पुरानी रस्में या तरीके नए जमाने के हिसाब से बदल जाते हैं लेकिन उनका मूल भाव बना रहता है।
हाँ बिल्कुल, और दूसरा बड़ा सबक है संप्रभुता और आत्मनिर्णय का। ये साहित्य बार बार अपनी पहचान, अपनी कहानी खुद कहने के हक पर जोर देता है, ये एक तरह का दावा है।
और जमीन से रिश्ता, वो बात मुझे बहुत अहम लगी।
हाँ, प्रकृति के साथ संबंध, ये पश्चिमी नजरिए से बहुत अलग है। प्रकृति सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो जीवित है, पवित्र है, उससे जुड़ाव है।
जमीन को एक सक्रिय भागीदार या रिश्तेदार की तरह देखना।
हाँ, और ये नजरिया आज पर्यावरण संकट के दौर में शायद बहुत जरूरी है। भारत में भी हम प्रकृति पूजा की परंपराएं देखते हैं, चिपको जैसे आंदोलन हुए हैं।
सही बात है। और तीसरा, वो मौखिक परंपराएं, ऑरिच, उनका सम्मान करना।
जी, उन्हें लिखित साहित्य से कमतर न समझना, वो अपने आप में परिष्कृत साहित्यिक रूप हैं, उनकी अपनी जटिलता है, अपनी कलात्मकता।
हमें ये समझने की जरूरत है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, जो कहानियां, किस्से, गीत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उनमें भी उतनी ही गहराई हो सकती है।
सही, और वो आज भी महत्वपूर्ण है, आज के लिखित साहित्य को भी प्रभावित कर रही हैं।
बिल्कुल, और हाँ, एक और बात, विविधता।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। नेटिव अमेरिकन साहित्य कोई एक चीज नहीं है, जैसे हमने कहा, सैकड़ों अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं, अनुभव हैं।
इस विविधता को समझना और उसकी सराहना करना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में इतनी विविधता है।
बिल्कुल, और शायद एक और थीम है, उपचार और परिवर्तन की, हीलिंग।
हाँ, ये भी कई कहानियों में आता है,
व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तर पर। लेखक अक्सर लेखन का इस्तेमाल करते हैं ऐतिहासिक ट्रॉमा से उभरने के लिए, पहचान के मुद्दों को सुलझाने के लिए और सांस्कृतिक उपचार को बढ़ावा देने के लिए। पढ़ना और कहानी सुनाना भी एक तरह से हीलिंग प्रैक्टिस बन जाता है।
तो अगर हम इन विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? एक तो शायद यही कि हम कहानी की अपनी परिभाषा को थोड़ा बड़ा करें, है ना?
हाँ बिल्कुल, सिर्फ किताबों या फिल्मों तक सीमित ना रखें।
अपने घर के बुजुर्गों की बातें, मोहल्ले के किस्से, लोक कथाएं, इन सबको भी सुने, महत्व दें। और जब हम मीडिया देखें तो सोचें कि किसकी कहानी बताई जा रही है और कैसे, क्या किसी को हाशिए पर तो नहीं रखा जा रहा?
सही कहा। और दूसरा, शायद हम अपने आसपास की जगहों, प्रकृति के साथ अपने रिश्ते पर दबाना सोच सकते हैं। क्या हम उसे सिर्फ इस्तेमाल की चीज मानते हैं या उसके साथ कोई गहरा रिश्ता महसूस करते हैं? पोटर की किताब हमें सिखाती है कि जमीन से जुड़ाव पहचान का एक अहम हिस्सा हो सकता है।
हाँ, और वो सर्वाइवेंस का विचार, वो मुझे बहुत प्रेरणादायक लगा।
हाँ, वो सिखाता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए सिर्फ टिके रहना काफी नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से, रचनात्मक तरीके से हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करना जरूरी है।
तो इस चर्चा के अंत में आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा छू गई?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेटिव अमेरिकन लिटरेचर है, ये कोई गुजरे जमाने की चीज नहीं है, कोई म्यूजियम पीस नहीं है।
हाँ, ये जीवित है,
ये आज भी जिंदा है, धड़क रहा है, और ये स्वदेशी समुदायों के लिए अपनी पहचान, अपने हक और अपने भविष्य को गढ़ने का एक शक्तिशाली जरिया है। ये गायब होते भारतीय की वो जो उदास कहानी बना दी गई थी,
हाँ, उस छवि को तोड़ता है।
हाँ, उसे तोड़कर सर्वाइवेंस की, यानी हार ना मानने और रचनात्मक रूप से आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देने वाली, आगे देखने वाली हकीकत सामने रखता है।
और मेरे लिए ये एहसास कि साहित्य कितना कितना व्यापक हो सकता है और कैसे वो मौखिक परंपराएं जिन्हें हम शायद कम आंकते हैं, वो लिखित शब्दों जितनी ही महत्वपूर्ण और जटिल हैं, साथ ही वो जमीन, कहानी और पहचान का जो गहरा अटूट रिश्ता है, वो सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, इस दुनिया में हमारी जगह क्या है। ये वाकई दुनिया को देखने का एक नया चश्मा देता है।
बिल्कुल,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।